پھر جب اس عقیدے کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودے کے توریت کی متوارث اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راست باز کے دل کو لعنتی اور خدا سے دور اور مہجور اور شیطان کا ہم خیال ٹھہرایا گیا، پھر ان سب خرابیوں کے ساتھ اس لعنتی قربانی کو قبول کرنے والوں کے لیے فائدہ کیا ہوا؟ کیا وہ گناہ سے باز آ گئے یا ان کے گناہ بخشے گئے؟ تو اور بھی اس عقیدے کی لغویت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی پاکیزگی حاصل کرنا تو بابداحت خلاف واقعہ ہے، کیونکہ بموجب عقیدہ عیسائیوں کے حضرت داؤد علیہ السلام بھی کفارہ یسوع پر ایمان لائے تھے، لیکن بقول ان کے ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ حضرت داؤد نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اور اس کی جورو سے زنا کیا اور نفسانی کاموں میں خلافت کے خزانہ کا مال خرچ کیا اور 100 تک جورو کی اور اخیر عمر تک اپنے ان گناہوں کو تازہ کرتے رہے اور ہر روز کمال گستاخی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کیا۔ بس اگر یسوع کی لعنتی قربانی گناہ سے روک سکتی تو بقول ان کے داؤد اس قدر گناہ میں نہ ڈوبتا، ایسا ہی یسوع کی 3 نانیاں زنا کی بری حرکت میں مبتلا ہوئیں۔ بس ظاہر ہے کہ اگر یسوع کی لعنتی قربانی پر ایمان لانا اندرونی پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے کچھ اثر رکھتا تو اس کی نانیاں ضرور اس سے فائدہ اٹھاتی اور ایسے قابل شرم گناہوں میں مبتلا نہ ہوتی۔ ایسا ہی یسوع کے حواریوں سے بھی ایمان لانے کے بعد قابل شرم گناہ سرزد ہوئے۔ یہودہ اسکریوتی نے 30 روپیہ پر یسوع کو بیچا اور پطرس نے سامنے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یسوع پر لعنت بھیجی اور باقی سب بھاگ گئے، اور ظاہر ہے کہ نبی پر لعنت بھیجنا سخت گناہ ہے، اور یورپ میں جو آج کل شراب خواری اور زناکاری کا طوفان برپا ہے اس کے لکھنے کی حاجت نہیں۔ ہم اپنے کسی پہلے پرچہ میں بعض بزرگ پادری صاحبوں کی زناکاری کا ذکر یورپ کے اخبارات کے حوالہ سے کر چکے ہیں۔ ان تمام واقعات سے بکمال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لعنتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکی۔ اب دوسرا شک یہ ہے کہ اگر گناہ رک نہیں سکتے تو کیا اس لعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بخشے جاتے ہیں؟ گویا یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بدمعاش ناحق کا خون کر کے یا چوری کر کے یا جھوٹی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہنچا کر اور یا کسی کے مال کو غبن کے طور پر دبا کر، اور پھر اس لعنتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے، اور ایسا ہی زناکاری کی ناپاک حالت میں ہمیشہ رہ کر صرف لعنتی قربانی کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے قہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ارتکاب جرائم کر کے پھر اس لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا بدمعاشی کا طریق ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے دل کو بھی یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا، لیکن اس قول سے وہ بڑی مشکلات میں پھنس گیا ہے، کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلاً داؤد نبی نعوذ باللہ ہمیشہ کے جہنم کے لائق ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا، اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی مقدس نانی ہے۔ علاوہ اس کے داؤد نے 100 تک بیوی بھی کی، جن کا کرنا بموجب اقرار عیسائیوں کے اس کو روا نہیں تھا۔ پس یہ گناہ اس کا پہلا گناہ نہ رہا بلکہ بار بار واقع ہوتا رہا، اور ہر ایک دن نئے سرے اس کا اعادہ ہوتا تھا۔ بس جب کہ لعنتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکتی تو بے شک عام عیسائیوں سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے، जैसा कि अब भी हो रहे हैं। बस बमोजब असूल पौलुस के दूसरा गुनाह उनका काबिले माफ़ी नहीं और हमेशा का जहन्नुम उसकी सज़ा है। इस सूरत में एक भी ईसाई दायमी जहन्नुम से निजात पाने वाला साबित नहीं होता। मसलन मियाँ सिराजुद्दीन दूर न जाएं, अपने हालात ही देखें कि पहले उन्होंने मरियम के साहिबजादे को खुदा का बेटा मानकर लानती कुर्बानी का अभिप्तस्मा पाया और फिर कादियान में आकर नए सिरे मुसलमान हुए और इकरार किया कि मैंने बपतिस्मा लेने में जल्दी की थी और नमाज पढ़ते रहे और बारहा मेरे रूबरू इकरार किया कि कफ़ारा की लगवियत की हकीकत बखूबी मेरे पर खुल गई है और मैं उसको बातिल जानता हूँ। और फिर कादियान से वापस जाकर पादरियों के दाम में फंस गए और ईसाइत को इख्तियार किया। अब मियाँ सिराजुद्दीन को ख़ुद सोचना चाहिए कि जब अव्वल वो बपतिस्मा पाकर ईसाई दीन से फिर गए थे और कौल और फेल से उन्होंने उसके बरखिलाफ किया, तो ईसाई उसूल के रूह से ये एक बड़ा गुनाह था जो दूसरी दफ़ा उनसे वकूअ में आया। बस पौलुस के कौल के मुताबिक ये गुनाह उनका बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए दूसरी सलीब की ज़रूरत है। और अगर ये कहो कि पौलुस ने गलती खाई है या झूठ बोला है, और असल बात यही है कि लानती कुर्बानी पर ईमान लाने के बाद कोई गुनाह गुनाह नहीं रहता। चोरी करो, जिना करो, खून नाहक करो, झूठ बोलो, अमानत में खयानत करो, गरज कुछ करो, किसी गुनाह का मुआखजा नहीं, तो ऐसा मज़हब एक नापाकी फैलाने वाला मज़हब होगा और वक्त की गवर्नमेंट को मुनासिब होगा कि ऐसे अकायद के पाबंदों की ज़मानतें ले ले। और अगर फिर इस ख्याल को दोबारा पेश करो कि लानती कुर्बानी पर ईमान लाने वाला सच्ची पाकिजगी हासिल करता है और गुनाह से पाक हो जाता है, तो हम इसका जवाब पहले दे चुके हैं कि यह बात हरगिज़ सही नहीं है। और हम अभी दाऊद नबी का गुनाह, यसू की नानियों के गुनाह और हवारियों के गुनाह और हजरत पादरी साहबों के गुनाह लिख चुके हैं, और इस बात को तमाम अहले तजर्बा जानते हैं कि यूरोप इन दिनों में बदकारियों में अव्वल दर्जे पर है। अगर फ़र्ज़ के तौर पर किसी की पाक ज़िंदगी की नज़ीर दी जाए तो इस बात का क्या सबूत है कि हकीकत में उसकी ज़िंदगी पाक है? बहुतेरे बदमाश, हरामखोर, जानी, दयूस, शराबखार, खुदा के मुनकर बज़ाहिर पाक ज़िंदगी दिखला सकते हैं और अंदर से उन कब्रों की तरह होते हैं जिनमें बजुज़ मुतअफ़्फ़न मुर्दा और उसकी हड्डियों के और कुछ भी नहीं होता। मासिवा इसके ये ख्याल करना भी बेजा है कि किसी कौम के सारे अपनी फितरत की रूह से नेक या सब के सब फितरतन बदमाश हैं, बल्कि हम देखते हैं कि खुदा के कानून कुदरत ने यह दावा करने का हक हर एक कौम को बख्शा है कि जैसे उनमें बाज़ लोग फितरतन बद अखलाक और बदसरश्त और बदअंदेश और बद किरदार हैं, ऐसा ही बमुकाबला उनके बाज़ दूसरे लोग फितरतन दिल के गरीब, नेक खुल्क, नेक चलन, नेक किरदार हैं। इस कानून कुदरत से ना हिंदू बाहर हैं, ना पारसी, ना यहूदी, ना सिख, ना बुद्ध मज़हब वाले, यहाँ तक कि चूड़े और चमार भी इसी कानून में दाखिल हैं। और जैसे जैसे लोग तहजीब और शाइस्तगी में बढ़ते हैं और उनका कवि मजमा इज़्ज़त और इल्म और वक़ार का रंग पकड़ता जाता है, उसी कदर उनके नेक फितरत लोग अपनी पाक ज़िंदगी और नेक चलनी में ज़्यादा नामवरी हासिल करते हैं और नुमाया चमक के साथ अपना नमूना दिखलाते हैं। अगर तमाम कौमों के बाज़ अफराद में फितरतन सआदत का मादा ना होता तो तब्दील मज़हब से भी वो मादा पैदा ना हो सकता, क्योंकि खुदा की फितरत में तब्दील नहीं। अगर कोई हकीकी सच्चाई का भूखा और प्यासा है तो ज़रूर उसको मानना पड़ेगा कि मज़हब के वजूद से पहले यह खुदादाद तकसीम तबाह में हो चुकी है कि किसी की फितरत में गलबाए हिल्म और मोहब्बत और किसी की फितरत में गलबाए दुरुस्ती और गज़ब है। अब मज़हब ये सिखलाता है कि वो मोहब्बत और अतात और सिद्क और वफा, जो मसलन एक बुत परस्त या इंसान परस्त मखलूक की नस्बत इबादत के रंग में बजा लाता है, उन इरादों को खुदा की तरफ फेरे और वो अतात खुदा की राह में दिखलाए। ये सवाल कि मज़हब का तसर्रुफ इंसानी गवाह पर क्या है, इंजील ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंजील हिकमत के तरीकों से दूर है। लेकिन कुरान शरीफ बड़ी तफसील से बार बार इस मसले को हल करता है कि मज़हब का ये मनसब नहीं है कि इंसानों की फितरती गवाह की तब्दील करे और भेड़िए को बकरी बनाकर दिखलाए, बल्कि मज़हब की सिर्फ इल्लत गई ये है कि जो गवाह और मलकात फितरतन इंसान के अंदर मौजूद हैं उनको अपने महल और मौका पर लगाने के लिए रहबरी करे। मज़हब का ये इख्तियार नहीं है कि किसी फितरती कुव्वत को बदल डाले, हाँ ये इख्तियार है कि उसको महल पर इस्तेमाल करने के लिए हिदायत करे और सिर्फ एक कुव्वत मसलन रहम या अफ पर ज़ोर न डाले, बल्कि तमाम कुव्वतों के इस्तेमाल के लिए वसीयत फरमाए, क्योंकि इंसानी कुव्वतों में से कोई भी कुव्वत बुरी नहीं, बल्कि इफरात और तफरीत और बद इस्तेमाली बुरी है। और जो शख्स काबिल मलामत है वो सिर्फ़ फितरती कवा की वजह से काबिल मलामत नहीं, बल्कि उनके बद इस्तेमाली की वजह से काबिल मलामत है। गरज कसाम मुतलिक ने हर एक कौम को फितरी कवा का बराबर हिस्सा दिया है, और जैसा कि ज़ाहरी नाक और आँख और मुँह और हाथ और पैर वगैरह तमाम कौमों के इंसानों को अता हुए हैं, ऐसा ही बातनी कुव्वतें भी सबको अता हुई हैं। और हर एक कौम में बलिहाज़ इतदाल या इफराद और तफरीद के अच्छे आदमी भी हैं और बुरे भी। लेकिन मज़हब के असर के रूह से किसी कौम का अच्छा बन जाना या किसी मज़हब को किसी कौम की शाइस्तगी का असल मूजिब करार देना उस वक्त साबित होगा कि उस मज़हब के बाज़ कामिल पैरुओं में उस किस्म के रूहानी कमाल पाए जाएं जो दूसरे मज़हब में उनकी नज़ीर न मिल सके। सो मैं ज़ोर से कहता हूँ कि यह खासा इस्लाम में है। इस्लाम ने हज़ारों लोगों को उस दर्जे की पाक ज़िंदगी तक पहुँचाया है जिसमें कह सकते हैं कि गोया खुदा की रूह उनके अंदर सकूनत रखती है। कबूलियत की रोशनी उनके अंदर ऐसी पैदा हो गई है कि गोया वह खुदा की तजल्लियात के मज़हर हैं। ये लोग हर एक सदी में होते रहे हैं और उनकी पाक ज़िंदगी बेसबूत नहीं और निरा अपने मुँह का दावा नहीं, बल्कि खुदा गवाही देता रहा है कि उनकी पाक ज़िंदगी है। याद रहे कि खुदा ताला ने कुरान शरीफ में आला दर्जा की पाक ज़िंदगी की ये अलामत बयान फरमाई है कि ऐसे शख्स से ख़वारिक ज़ाहिर होते हैं और खुदा ताला ऐसे शख्सों की दुआ सुनता है और उनसे हम कलाम होता है और पेश अज़ वक्त उनको गैब की खबरें बतलाता है और उनकी तायीद करता है। सो हम देखते हैं कि हज़ारों इस्लाम में ऐसे होते आए हैं, चुनाचे इस ज़माने में ये नमूना दिखलाने के लिए ये आजिज़ मौजूद है। मगर ईसाइयों में ये लोग कहाँ और किस मुल्क में रहते हैं जो इंजील की करारदादा निशानियों के मवाफिक अपना हकीकी ईमान और पाक ज़िंदगी साबित कर सकते हैं। हर एक चीज़ अपनी निशानियों से पहचानी जाती है, जैसा कि हर एक दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और अगर पाक ज़िंदगी का सिर्फ दावा ही है और किताबों के मुकर्रर करदा निशान उस दावे पर गवाही नहीं देते तो ये दावा बातिल है। क्या इंजील ने सच्चे और वाकई ईमान की कोई निशानी नहीं लिखी? क्या उसने उन निशानों को फौकुल आदत के रंग में बयान नहीं किया? बस अगर इंजीलों में सच्चे ईमानदारों के निशान लिखे हैं तो हर एक ईसाई पाक ज़िंदगी के मुद्दई को इंजील के निशानों के मुवाफिक आजमाना चाहिए। एक बड़े बुज़ुर्ग पादरी का एक गरीब से गरीब मुसलमान के साथ रूहानी रोशनी और कबूलियत में मुकाबला करके देख लो, फिर अगर उस पादरी में उस गरीब मुसलमान के मुकाबले पर कुछ भी आसमानी रोशनी का हिस्सा पाया जाए तो हम हर एक सज़ा के मुस्तहिक हैं। इसी वजह से मैं कई दफ़ा इस बारे में ईसाइयों के मुकाबले पर इश्तहार दे चुका हूँ, और मैं सच सच कहता हूँ और मेरा खुदा गवाह है कि मुझ पर साबित हो गया है कि हकीकी ईमान और वाकई पाक ज़िंदगी जो आसमानी रोशनी से हासिल हो बजुज इस्लाम के किसी तरह मिल नहीं सकती। ये पाक ज़िंदगी जो हमको मिली है ये सिर्फ हमारे मुँह की लाफो गजाफ नहीं, इस पर आसमानी गवाहियाँ हैं। कोई पाक जिंदगी बजुज आसमानी गवाही के साबित नहीं हो सकती और किसी के छुपे हुए निफाक और बेईमानी पर हम इतला नहीं पा सकते। हाँ, जब आसमानी गवाही वाले पाक दिल लोग किसी कौम में पाए जाएं, तो बाकी कौम के लोग बज़ाहिर पाक जिंदगी नुमा भी पाक जिंदगी वाले समझे जाएंगे, क्योंकि कौम एक वजूद के हुक्म में है और एक ही नमूना से साबित हो सकता है कि इस कौम को आसमानी पाक जिंदगी मिल सकती है। नोट: इस जगह कोई गुज़िश्ता किस्सा पेश करना लग्व है, मौजूदा वाक़यात को बिल मुकाबिल दिखलाना चाहिए। मिन्हू।